आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामचंद्र भावे की कन्नड़ कहानी छिपकली आदमी का हिंदी अनुवाद। कहानी के अनुवादक हैं डीएन श्रीनाथ और स्वर है अनुराग शर्मा का।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
तुंगक्का डर गई। उसे लगा कि दुर्वासा ऋषि जैसा पति और बच्चे जैसे बेटे के बीच फंसकर वो बैंगन की पकौड़ी हो जाएगी। इधर पति उधर बेटा, दोनों में से उसे कौन चाहिए? किसका हाथ पकड़ूं, किसका छोड़ूं? उसे लगा कि इन दोनों में कोई भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। पति जरा चिड़चिड़े स्वभाव का है। ये बात जब तक तुंगक्का की समझ में आई तब तक उसकी शादी के 10 साल बीत चुके थे। कभी कभी पति के कारण उदासीनता, हिचकिचाहट, दुख सब होता था, मगर वो खुद को ही सांत्वना दे देती थी कि पति बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा पंडित है, लोग उसका आदर करते हैं। कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ, ये भी दुख था। उसके बाद तीर्थयात्रा, भजन पूजन किया तो भगवान की कृपा से 2 बेटियां हुई। तीसरा बच्चा उनकी इच्छा के अनुसार बेटा ही हुआ, मगर तुंगक्का को उस बच्चे के जन्म लेने पर संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वह पति के वंश को बढ़ाने योग्य नहीं था। वासु का सिर बड़ा था, छोटे छोटे बाल थे, मुंह में एक दांत भी था। बच्चे को देखने जो लोग आए उनमें से एक ने अपना मुंह टेढ़ा करके कहा, यह तो राक्षस निकला। यह बात पति के कान में पड़ी और मस्तिष्क में बैठ गई। उस दिन से बेटे के बारे में उनका स्नेह वैसा न रहा जैसा रहना चाहिए था। उन्होंने इकलौते बेटे को गोद में उठाकर प्यार नहीं किया, उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। बेटे के बारे में गर्व करना तो दूर, उसकी छाया देखने से भी उनकी सहन शक्ति की सीमा टूट जाती थी। वासु को बातचीत करने और चलना सीखने में भी दिक्कत हुई। जब वह पढ़ने लगा तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि लड़का तेज है। बेटे की दीन हालत देखकर बेचारी तुंगक्का को अतीव दुख हुआ। पढ़ने लिखने में वासु की रुचि नहीं थी, ठीक है, मगर उसके शौक विलक्षण थे। वो कीड़े और मेंढक पकड़कर जेब में डाल लेता था, गिरगिट को रस्सी से बांधकर खिलाता था, कुत्ते के पिल्ले को सर्कस दिखाता था। जब वह 15 साल का हुआ तो इतना पक गया कि घर में ये कहकर जाता था कि रात में दोस्त के घर पढ़ने जाऊंगा, पर लोग कहते हैं आधी रात को घंटों तक शमशान में भटकता था। वहां से आने से पहले एक दो खोपड़ियां लाता और उन्हें किसी न किसी के दरवाजे के पास रख देता। सवेरा होने पर उनकी हालत देखकर खिल्ली उड़ाता। इस बात में कितना झूठ है कितना सच मालूम नहीं, मगर तुंगक्का को इस बात में कतई विश्वास नहीं होता था। पंडित जी को लगता कि ऐसा बड़ा आदमी मेरे घर पैदा हुआ, यह पूर्व जन्म के पापों का ही फल है। कभी कभी बाजार या मंदिर में स्कूल के मास्टर से भेंट हो जाती तो वह कह उठते, वासु कुछ भी पढ़ता नहीं, स्कूल भी ठीक से नहीं आता। इस शिकायत से पंडित जी को लगता था कि धरती फट क्यों नहीं जाती ताकि वे उसमें समा जाएं। इस बात में सच्चाई भी थी, शिकायत करने वाले उन्हें ढूंढ ढूंढ कर आते थे, इस बात का उन्हें दुख था। पंडित जी को सिर्फ एक बात का पता था कि डांट डपट से डरकर शायद बेटा सुधर जाए। इसकी आशा से कभी कभी बेटे को मजबूती से पकड़कर मारते पीटते थे, मगर उन्हें यह पता ना लगा कि बेटे की आंखों में धीरे धीरे उनके लिए नफरत बढ़ रही है। अब तक तो किसी तरह वासु घोड़े वाली गाड़ी के समान टक टक करके चलता था, मगर इस बार परीक्षा में फेल हो गया। इस बात का पता चलते ही तुंगक्का की छाती धड़कने लगी। उसे इस बात का डर था कि बेटे के फेल हो जाने से नाराज होकर पति महाशय उसे मार ही ना डालें। तुंगक्का मुंह पर ताला लगाकर बैठ गई कि पति आ पहुंचे। उनका चेहरा देखकर वह छटपटाने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि आग जैसे जलते पति को शांत कैसे करे। कहाँ है वह, अभी तक घर नहीं आया ना? पंडित जी फुफकारे। आएगा आएगा, पहले आप हाथ मुंह तो धो लें।
मेरा सर, तुम्हारे पुत्र ने तो मेरे मुंह पर तारकोल पोत दिया है।
आखिर जब तक वासु आया तब तक पंडित जी ने अच्छी खासी लाठी तैयार कर ली थी।
कहाँ गया था इतनी देर तक, परीक्षा का नतीजा क्या निकला?
मूर्ख, लगता है कि तेरे पेट में खाना ज्यादा ही चला गया है। पंडित जी ने लाठी ऊपर उठाई तो उन्हें रोकने पत्नी आई।
पंडित जी ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखा। वह वैसी की वैसी रुक गई, बेटे को मारने लगे। वासु जितनी मार सह सकता था सह गया, मगर जब सह ना सका तो चीखने चिल्लाने लगा और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पंडित जी हांफने लगे। उन्होंने वासु को घसीटते हुए कमरे के अंदर डाल दिया और पत्नी को घूरते हुए चिल्लाए, दो दिन तक इसे खाना पानी मत देना, अगर दिया तो। पीड़ा, अपमान और थकान के कारण वासु को रात भर नींद नहीं आई। वह खिड़की के पास आकर चिल्लाने लगा, भूख लगी है, भूख लगी है। मगर उत्तर में पिता की गालियां मिली। वासु को दुख हुआ। पत्नी आंखें बचाकर आधी रात को वासु को खाना देगी, इस विश्वास के साथ पंडित जी ने दरवाजे के आगे ही बिस्तर लगा लिया। जब दूसरे दिन भी दरवाजा न खुला तो वासु घबराया, दबाव, कमजोरी और दर्द से कराहने लगा। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को दिया जलाते वक्त तुंगक्का अपने को रोक न सकी। उसे खाने की थाली के साथ खिड़की के पास आना ही पड़ा, मगर पंडित जी आए और थाली खींच ली। माँ ने कई बार विनती की, मगर पिता गालियां देते हुए चिल्लाने लगे। ये सब दृश्य वासु ने देखा। उसके होठों पर एक अनोखी हंसी उमड़ आई। ऐसा बेटा जिंदा रहने के बजाय अच्छा है कि मर जाए। पिता माँ को घसीटते हुए रसोई घर में धकेल रहे थे। वासु को पिता की ओर देखने की इच्छा न हुई। लगा कि वो सब कुछ भूल गया है। अब उसका ध्यान दीवार पर लगा था जहां पर छिपकलियां थीं। कमरे से टप टप की आवाज सुनाई पड़ी, साथ में कभी हंसने की और अपने आप से बातें करने की आवाजें आने लगी। पंडित जी को इन आवाजों में फर्क नजर आया तो वह डर गए। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वासु किस चीज की तलाश कर रहा है। उन्होंने अधीरता से पत्नी को पास बुलाया। तुंगक्का ने आते ही चिल्लाते हुए कहा, वहां देखिए, वह छिपकली पकड़ रहा है। छिपकली शब्द कान में पड़ते ही पंडित जी का शरीर घृणा से कांप उठा और वे अविश्वास के साथ देखने लगे। उसी क्षण से वासु दूसरा ही आदमी लग रहा था। उसके चेहरे में भग्नता थी, आंखों में कोई विलक्षण झांकी थी। उसने 10-15 छिपकलियों को पकड़कर जमीन पर ढेर लगा दिया था। वो कभी पिता की ओर देखता और दांत दिखाकर किटकिटाता था, फिर दीवार पर छिपकली की तलाश करता था। बेटे की अकल पर भूत सवार हो गया है, यह विचार जब पंडित जी के मन में आया तो वो बहुत घबराए। छिपकली तो विषैली है, पागल वासु ने भूख के मारे उसे ही खा लिया तो। इस डर से उन्होंने जल्दी से ताला खोल दिया। दरवाजा खुलने पर भी वासु ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वो अपने खेल में ही लगा रहा। धीरे धीरे पंडित जी को बेटे से डर लगने लगा। अब उसके व्यवहार में पूरा परिवर्तन आ गया था। वो दूसरों के साथ हिलता मिलता नहीं था, खाते वक्त भी उसकी आंखें दीवार पर टिकी रहती थीं। पंडित जी को आश्चर्य होता था कि उसके कानों में छिपकली की चाल की आहट कैसे सुनाई पड़ती है। अगर छिपकली दिखाई पड़ती तो तुरंत उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता था, तभी उसे तसल्ली मिलती थी। एकाएक छिपकली को देखने पर उसे ईर्ष्या क्यों शुरू हुई, पंडित जी ने कई बार सोचा पर कुछ भी समझ ना पाए। पत्नी ने एक बार बेटे को डॉक्टर के पास ले जाकर जांच कराने की सलाह दी, मगर पंडित जी ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, खाता है, घूमता है। उनको भय था कि बेटे को डॉक्टर के पास ले जाने पर लोग उन्हें पागल का बाप कहेंगे। वासु के प्रति पंडित जी की घृणा बढ़ने लगी। उन्हें शक था कि वासु के कारण वो अपने ही गांव में सिर उठाकर चल नहीं सकेंगे, इसलिए पंडित जी ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुपचाप रहने की आदत डाल ली। जब लोगों को वासु के इस करतब का पता लगा तो कुछ शरारती लोग उसे देखने के इरादे से उनके घर बार बार आने लगे। कुछ लोगों को निराशा भी हुई कि पंडित जी के घर से छिपकलियों का नाश हो गया, मगर वे अपनी कौतूहल को दबा न सके और वासु को अपने घर बुलाने लगे। अगर मन में हो तो वासु उनकी मांग पूरी करता था। पंडित जी पूरी तरह से हार गए थे, चिंता के कारण दुबले हो गए, शरीर झुक गया, बाहर जाकर लोगों का सामना करने की शक्ति ना रही, हमेशा अंदर ही रहने लगे थे। तन की चमड़ी सफेद हो गई, उपासना और पारायण में मन नहीं लगता था, सब कुछ छोड़ दिया, एक प्रकार से मतिभ्रम की स्थिति में रहने लगे। धीरे धीरे इस सोच के कारण वे बूढ़े हो गए कि वासु उनका किसी जन्म का शत्रु है। अब वासु पंडित जी को मनुष्य जैसा नहीं लगता था, वह राक्षस है या जानवर है, ये बात मन में आते ही वह उदास हो जाते थे। लगता था कि ये उनकी विफलता है। दो दिन खाना नहीं दिया। इस पर वासु ने उनसे बदला लेने के लिए ऐसा रवैया अपनाया। अब उसे सुधारना असंभव था, कोई उपाय नहीं था। वे निराश हो गए। अब उनके सामने ना चाहते हुए भी हर समय वासु का चेहरा आ जाता था। उसकी आंख, चाल चलन, छिपकलियों को ढूंढने की उसकी एकाग्रता, शिकारी के जैसे चलने की चाल, लपक कर एकाएक पकड़ने की उसकी कला, यह सब सोचकर पंडित जी कभी कभी सपने में भी डर जाते थे। इतने दिन तो तुंगक्का ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचा, पर अब पति की दयनीय स्थिति को देखकर बहुत ही डर गई। पति कभी हाथी जैसे हट्टे कट्टे थे, मगर अब बकरी की तरह हो गए थे। जब उसने बेटे का अनोखा शौक देखा तो उसे वह देखने की आदत भी हो गई। उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, वह निर्लिप्त हो गई। मगर पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती। पति जब खाने की थाली देखते तो उन्हें उल्टी आ जाती थी। धीरे धीरे वह सूखी लकड़ी के समान हो गए। तुंगक्का को पता था कि पति में बेटे का चेहरा देखने का साहस बचा नहीं है। वे उससे दूर दूर भाग रहे हैं। उपदेश देने और दंड देने की इच्छा भी उनमें नहीं है। वे उसकी छाया से भी डरते हैं। उसके सामने खुद अपराधी होकर सिर झुका देते हैं। पति का हमेशा अकेले कमरे में बैठना, चिंता करना और जीने की राह से विमुख होकर इस तरह व्यवहार करना तुंगक्का को ठीक न लगा। उसे लगा कि पति को इस तरह छोड़ देने से उन्हें कुछ भी हो सकता है, अब देरी करना ठीक नहीं। उसने पड़ोसी के एक लड़के से फोन करके अपने भाई को बुलवा लिया। दूसरे ही दिन शाम के वक्त भाई आ पहुंचा। वासु छोटी सी नींद के बाद दीवार पर नजरें टिकाए बैठा था। मामा को देखकर खड़ा हो गया। वासु के बारे में जो कुछ सुना था उसका ख्याल आते ही मामा को अजीब सा अनुभव हुआ। बहनोई जी कहाँ हैं? मामा के पूछने पर वासु ने आंखों से कमरे की ओर इशारा किया। जब मामा वहां पहुंचा तो पंडित जी आंखें खोलकर लेटे हुए थे। वे अपने जीवन के सब सपने, आशाएं खो बैठे थे। मामा को ये बात तुरंत ही पता चल गई। आप कैसे हैं? मैं आया हूं। जब मामा पिता के पास बैठ गया तो वासु दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। ये एकाएक क्या हो गया आपको? क्या हुआ है? आप तो कमजोरी से छिपकली की तरह हो गए हैं। मामा ने व्यग्रता से उन्हें देखा। पंडित जी को लगा मानो एकाएक किसी ने उनकी छाती पर जोर से मार दिया है। उनके मुंह से हाय की आवाज निकली। उन्होंने बेटे की ओर देखा। उन्हें लगा छिपकली शब्द सुनते ही वासु की आंखें बड़ी हो गई हैं। उसके मुंह में जीभ खेल रही थी। उसने पिता पर नजर जमाई और मानो लक्ष्य को पकड़ने के लिए आगे पिता के पसरे पांव की ओर बैठ गया। पंडित जी को लगा कि बेटा एकटक उन्हें ही घूर रहा है। उसकी आंखों में जो अनोखी चमक थी उसे देखते देखते वह सिर से पांव तक पसीने से तर हो गए। लगा कि प्रकृति में कोई असंगतता हो गई है। वासु ने जम्हाई लेने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो पंडित जी को लगा कि वे क्षीण होते जा रहे हैं और वासु प्रेत के समान बड़ा होता जा रहा है, अब वह उन्हें पटक देगा। ये सोचते ही पंडित जी चीखने चिल्लाने लगे। मामा जो उनके पास ही बैठा था एकाएक घटी इस घटना से हक्का बक्का रह गया। पंडित जी अंट शंट बकने लगे। उसने पंडित जी को पुकारा, बहनोई जी, बहनोई जी, मगर तब तक पंडित जी अपना होशो हवास खो बैठे थे। उनकी चेतना खो गई थी। वे लेटे ही लेटे थोड़ी सी सांस लेने के लिए छटपटाने लगे मानो उन्होंने अपने प्राणांत की सूचना दे दी हो।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।